अध्यात्म के सही स्वरूप का पुनर्जागरण। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गलने का नाम अध्यात्म। देवियों भाइयों,
आपको जहां कहीं भी वृक्षलता और पुष्प खिले हुए दिखाई पड़े, समझ लेना कि यह जादू और चमत्कार उसका है जो बीज गल गया। गले हुए बीजों का परिणाम आपको बगीचों के रूप में, फूलों के रूप में, उद्यानों के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन जहां कहीं ऐसा दिखाई पड़ता हो कि सूखी हुई जमीन पड़ी है, सुनसान पड़ा हुआ है, जान लेना वहां कोई बीज गलने को तैयार नहीं हुआ। वहां बीजों ने गलने से इनकार कर दिया है। बीज जब कभी भी गले हैं, दुनिया में शांति आई है, दुनिया में खुशी आई है, दुनिया में व्यवस्था आई है, उन्नति आई है। हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन की सार्थकता को इस बात से जोड़कर रखा कि मेरे गलने की प्रक्रिया कहाँ तक सफल रही। हर आदमी ने अपने आप से हजार बार यह सवाल किया कि क्या मैं गलने में समर्थ हुआ, क्या मैं समाज के लिए गला, क्या मैं भगवान के लिए गला।
अगर गलने का जवाब यह आया कि हाँ मैं गला, तो व्यक्तिगत जीवन में हरियाली आएगी, सामाजिक जीवन में हरियाली आएगी। लेकिन मित्रों,
जहाँ कहीं भी मनुष्य यह कह रहे होंगे कि हम नहीं गलेंगे, हम तो लेंगे और पाएंगे, वहाँ बड़ी मुश्किल आ जाएगी, कठिनाई आ जाएगी।
वह अभागा देश ढलता हुआ चला जाएगा, पतित होता हुआ चला जाएगा, नष्ट होता हुआ चला जाएगा।
वह व्यक्ति पतित होता हुआ चला जाएगा, नष्ट होता हुआ चला जाएगा, जिसके मन में गलने की तमन्ना नहीं है, गलने की उम्मीद नहीं है, जिसको केवल पाने की उम्मीद है, वह बड़ा स्वार्थी आदमी है। जिसको भगवान से सिर्फ पाना है, गुरु से सिर्फ पाना है, ऑफिसर से सिर्फ पाना है, स्त्री से सिर्फ पाना है, बाप से सिर्फ पाना है, जिसे सिर्फ पाना है, देना किसी को नहीं है, तो ऐसा मनुष्य बड़ा भाग्यहीन है और वह जीवन में डैक पाएगा और डैक देगा। डैक देना इसके भाग्य में बदा है और डैक पाना इसके भाग्य में बदा है। इसके मन में यह उमंग उत्पन्न नहीं होती कि हमको गलना है। गलने का नाम ही अध्यात्म है।
मित्रों,
कभी भारतवर्ष में घर घर में अध्यात्म था।
इस समय के अध्यात्म को मैं अध्यात्म नहीं कहता।
मैं तो सुबह भी आपको कह रहा था कि आज के अध्यात्म में विशुद्ध बहुरूपियापन है। कौन सा वाला? जिसमें हमने यह ख्याल रखा कि कम पैसों में और कम कीमत में बड़ी चीज मिल जानी चाहिए। ठगे जाने वाले लोग और ठगने वाले लोग दोनों की नीयत, दोनों की प्रक्रिया एक है कि कम पैसे में ज्यादा चीज मिलनी चाहिए। लॉटरी क्या है? यही कि हमको अपनी जेब में से एक रुपया खर्च करना चाहिए और 3 लाख प्राप्त करना चाहिए। कितने ही लोग हैं जिन्होंने लॉटरी के टिकट खरीदे हैं। आप उनके पास जाइए और इंक्वायरी कीजिए कि आप लोगों में से कितने आदमी हैं जिन्होंने 1 रुपये खर्च करके 3 लाख रुपये पाए हैं।
आपको 1000 में से 999, 1 लाख में से 99,999 व्यक्ति यह कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारा 1 रुपया बट्टे खाते में चला गया। जो मुनासिब कीमत चुकाए बिना लंबे चौड़े ख्वाब देखता रहता है, उसका वह 1 रुपया जाना ही चाहिए और बर्बाद होना ही चाहिए।
अध्यात्म लॉटरी नहीं है।
मित्रों,
हमने अध्यात्म को सत्य के रूप में, लॉटरी के रूप में इस्तेमाल किया।
हमने कम से कम कीमत की चीज भगवान को देने की कोशिश की।
कम से कम चीज क्या है? जबान की नोक, चमड़े की नोक, जिससे कि हम सारे के सारे दिन बक झक करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, बेकार की बातें बकते रहते हैं, झूठ सच बोलते रहते हैं और शेखी एवं शान बघारते रहते हैं। उसी गंदी जबान से हमने 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट यह कोशिश की कि इससे कुछ मंत्र का उच्चारण कर लें। मैं आपसे मंत्र जप की बात नहीं कहता, अनुभव की बात कहता हूँ। मंत्र का जप अलग होता है। मंत्र का जप जबान से नहीं निकलता, हृदय से निकलता है और हृदय ऐसा होना चाहिए जिससे राम का नाम निकल सके। अभी तो हमारी जबान की नोक से, उस कमीनी जीभ की नोक से, जो कि सिवाय झूठ बोलने और बुरी बात बोलने की आदि थी, थोड़े से हर्फ अक्षर उच्चारण किए गए हैं। उससे कभी राम का नाम लिया, कभी हनुमान का नाम लिया, कभी गायत्री का नाम लिया, कभी किसी का नाम लिया और ख्वाब देखे।
क्या ख्वाब देखे? यही कि भगवान, जो सारी संपदाओं का स्वामी है, उसके प्यार का एक कण और एक किरण हमको भी मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं, हमारा जीवन सार्थक हो जाए।
उसको प्राप्त करने के लिए हमने कितनी सारी चीजें देने की हिम्मत की और जुर्रत दिखाई। इतनी हिम्मत दिखाई कि जबान की नोक में से थोड़े से हर्फों का उच्चारण कर दिया करें।
मित्रों, यह विशुद्ध रूप से लॉटरी लगाने वाली नीयत है कि इससे हमको दुनिया के लाभ और सुख संपदाएं, जिसमें कि दुनियावी जीवों की भौतिक संपदाएं भी जुड़ी हुई हैं, मिलनी चाहिए। जैसे कि हमको धन मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए और हमारी शादी होनी चाहिए, बाल बच्चे होने चाहिए और हमारी नौकरी में तरक्की होनी चाहिए। दुनिया के 999 फायदे हमको होने चाहिए।
किस कीमत पर फायदा होना चाहिए? इस कीमत पर फायदा होना चाहिए कि हम अपनी गंदी जबान की नोक से थोड़े से हर्फों का उच्चारण करते हैं। आपकी समझ में यह बात आ गई, पर मेरी समझ में नहीं आती कि एक हीरा जो 5000 रुपये में आता है, उसे 5 नए पैसे में दे दीजिए। बेटे, यह तेरे 5 नए पैसे भी कोई और छीन लेगा, पर तुझे हीरा मिलने वाला नहीं है।
नहीं साहब, हम तो 5 पैसे में ही हीरा लेकर जाएंगे।
बेटे, यह गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, 5 नए पैसे में हीरा कभी नहीं आएगा।
साथियों,
अध्यात्म का मतलब लोगों ने सिर्फ इतना कैसे मान लिया, यह देखकर मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़ा अचंभा होता है।
इन थोड़े से हर्फों का उच्चारण क्या हमको भगवान को दिला सकता है?
क्या हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है?
क्या हमको प्रगति के मार्ग पर चलने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल नामुमकिन है। हिंदुस्तान जैसा पूजा पाठ करने वाला मुल्क दुनिया में शायद कहीं भी आपको नहीं मिलेगा।
ईसाई लोग हर इतवार के दिन गिरजे में जाकर के घुटने टेक करके बैठ जाते हैं,
थोड़ी देर प्रार्थना करके चले जाते हैं। हिंदुस्तान में आपको अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे जो सारा दिन माला घुमाते ही मिलेंगे।
कौन क्या कर रहा है? कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है। सारे के सारे मस्तिष्क से विकृत, सारे के सारे मनोविकारों, बीमारियों के जखीरे जिनके ऊपर जमा हैं और असंख्य कठिनाइयों में दबे पड़े हैं।
ये कौन आदमी है जिन्होंने राम के नाम का महात्म्य जमीन से लेकर आसमान तक लिया और यह देखा कि हम सत्संग सुन लेंगे, कथा सुन लेंगे, भागवत सुन लेंगे और यह जप कर लेंगे, वह जप कर लेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा।
राम का नाम नहीं काम जरूरी।
मित्रों,
अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां से आप राम का नाम लेना शुरू करते हैं और राम का नाम लेने के बाद राम का काम करने की हिम्मत दिखाते हैं और राम की ओर कदम बढ़ाने की जुर्रत करते हैं। राम की ओर कदम बढ़ाना वह है जिसमें हमको गलना सिखाया जाता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने जीवन का एक चौथाई हिस्सा गलना सिखाने के लिए छोड़ रखा था। उन्होंने हर इंसान से कहा था कि आपको अपनी जिंदगी का एक चौथाई हिस्सा गलने के लिए लगाना चाहिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए लगाना चाहिए, लेकिन आज वह परंपराएं समाप्त हो गईं।
इसलिए हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता।
हो भी कैसे सकता है? जिस देश में समाज को ऊंचा उठाने के लिए, मानव जाति की पीड़ा और पतन को दूर करने के लिए आदमी कुर्बानी करने के लिए तैयार न हो, वहां किस तरीके से खुशहाली आ सकती है?
मित्रों, हमारे अध्यात्म का क्रम ही गंदा हो गया। पहले अध्यात्म का क्रम साबुन के तरीके सा था।
इसमें से कितने आदमी निकलते थे और दुनिया की सफाई करते थे तथा दुनिया में शांति लाते थे।
लेकिन आज वही अध्यात्म का क्षेत्र बहिरंग जीवन से एवं अंतरंग जीवन से दोनों से भिखारी हो गया।
फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अध्यात्म का बहिरंग जीवन भिखारियों का जीवन नहीं है? संतों के पास जाइए और तलाश कीजिए कि उनका बहिरंग जीवन क्या है।
आपको उनका जीवन भिखारियों जैसा मालूम पड़ेगा।
वे यहाँ से पैसा मांगते हैं, वहाँ से पैसा मांगते हैं,
यहाँ रोटी मांगते हैं, वहाँ दान मांगते हैं, दक्षिणा मांगते हैं। उनका बहिरंग जीवन भिखारियों जैसा है।
इसी तरह पंडित के पास जाइए, ज्ञानी के पास जाइए, पुरोहित के पास जाइए, सभी का बहिरंग जीवन भिखारियों जैसा है।
मित्रों,
हम कैसे कह सकते हैं कि उनका जीवन शानदार है? जिसका अंतरंग जीवन भिखारी है तो हम कैसे कहें कि इसके पास अध्यात्म की हवा आ गई, अध्यात्म का नशा आ गया?
मित्रों, भिखारी आदमी अध्यात्मवादी नहीं हो सकता। अध्यात्मवादी आदमी देने वाला होता है, प्यार करने वाला होता है।
भक्ति का मतलब प्यार करना होता है।
कहाँ है हिंदुस्तान का अध्यात्म? लेकिन हमारा अंतरंग जीवन भिखारी जैसा है।
जहाँ कहीं भी गए, हाथ पसारते हुए गए।
लक्ष्मी जी के पास गए तो हाथ पसारते हुए गए, संतोषी माता के पास गए तो हाथ पसारते हुए गए, हनुमान जी के पास गए तो हाथ पसारते हुए गए,
दर दर पर हम कंगाल होकर गए।
मित्रों, क्या अध्यात्मवादी दर दर मांगने वाला कंगाल होता है?
नहीं, अध्यात्मवादी कंगाल नहीं होता है। वह राजा कर्ण के तरीके से दानी होता है, उदार होता है, उदात्ता होता है। लेकिन जब हम तलाश करते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं भी क्या अध्यात्म जिंदा है, तो हमको पुजारियों की संख्या ढेरों की ढेरों दिखाई पड़ती है, पर अध्यात्म हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। यह देखकर हमारी आंखों में चक्कर आ जाता है कि हिंदुस्तान में से अध्यात्म खत्म हो गया, दूसरे देशों में अध्यात्म है। इंग्लैंड और दूसरे देशों में जब हम पादरियों को देखते हैं, जहां खाने पीने और रहने की सुविधाएं हैं, जहां सड़कें हैं, जहां रेलगाड़ियां हैं, जहां टेलीफोन है, जहां बिजली है, उन सुविधाओं को छोड़ करके अफ्रीका के कांगो के जंगलों में, हिंदुस्तान के बस्तर के जिलों में, नागालैंड के जंगलों में चले जाते हैं, जहां सिवाय कष्ट और तकलीफ के और क्या मिल सकता है। वहां कोई चीज नहीं है। मेरे मन में आता है कि इनके पैर धोकर पीना चाहिए।
क्यों?
क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में अध्यात्म को समझा है, अध्यात्म का स्वरूप और मर्म समझा है कि अध्यात्म किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं।
मित्रों,
हमने तो इनका मर्म कभी समझा ही नहीं।
हमने तो रामायण को पढ़ने का मतलब ही धर्म मान लिया। हमने तो माला घुमाने को ही धर्म मान लिया। हमारी यह कैसी फूहड़ व्याख्या है।
इन व्याख्याओं का मतलब कुछ भी नहीं है। जिस स्तर के हम लोग हैं, ठीक उसी स्तर की व्याख्या हम लोगों ने कर ली है। ठीक उसी स्तर के भगवान को हमने बना लिया है।
ठीक उसी स्तर की भगवान की भक्ति को बना लिया है।
सब चीजें हमने उसी तरह से बना ली हैं जैसे कि हम थे।
मित्रों,
हमको संसार में फिर से अध्यात्म लाना है, ताकि हमारे और आपके सहित हर आदमी के भीतर एवं चेहरे में चमक आए, तेज आए और हम सब विभूतिवान होकर जिएं। हम शानदार होकर जिएं और जहां कहीं भी हमारी हवा फैलती हुई चली जाए, वहां चंदन की तरीके से हवा में खुशबू फैलती हुई चली जाए, गुलाब की तरीके से हवा में हमारी खुशबू फैलती हुई चली जाए।
हम जहां कहीं भी अध्यात्म का संदेश फैलाएं, वहां खुशहाली आती हुई चली जाए। इसलिए मित्रों, हम अध्यात्म को जिंदा करेंगे।
उस अध्यात्म को जो ऋषियों के जमाने में था,
उन्होंने लाखों वर्षों तक दुनिया को सिखाया, हिंदुस्तान वालों को सिखाया, प्रत्येक व्यक्ति को सिखाया।
लेकिन वह अध्यात्म अब दुनिया में से खत्म हो गया, अब नहीं है। हिंदुस्तान में तो नहीं ही रह गया है और दुनिया में कहीं रहा होगा तो रहा होगा।
हिंदुस्तान में हम फिर से उसी अध्यात्म को लाएंगे जिससे कि हमारी पुरानी तवारीख को इस तरीके से साबित किया जा सके।
फिर हम दुनिया को वही शानदार लोग देने में समर्थ हो सकेंगे जैसे कि वैज्ञानिकों ने दिए हैं।
मित्रों, वैज्ञानिकों को धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे लिए पंखे दिए, बिजली दी, टेप रिकॉर्डर दिए, घड़ी दी।
ये चारों चीजें लिए हम यहाँ बैठे हैं।
उनको बहुत धन्यवाद है। और अध्यात्म विज्ञान का एहसान इससे लाखों गुना बड़ा था।
उसने हमारे बहिरंग जीवन के लिए सुविधाएं दी और आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य के भीतर दबी हुई खदाने, जिनमें हीरे भरे हुए हैं, जवाहरात भरे हुए हैं और जाने क्या क्या भरे हुए हैं, उन्हें खोदकर उभारकर बाहर निकाला। अध्यात्म इस छोटे से इंसान को, नाचीज इंसान को जाने क्या से क्या बनाकर रख देता है। ऐसा है अध्यात्म जो एक जुलाहे को कबीर बना देता है, एक छोटे से व्यक्ति को संत रविदास बना देता है, नामदेव बना देता है। यह छोटे छोटे आदमियों को, बिना पढ़े लिखे आदमियों को जाने क्या से क्या बना देता है। यह बड़ा शानदार अध्यात्म है और बड़ा मजेदार अध्यात्म है।
शानदार अध्यात्म का पुनर्जागरण। मित्रों, इस शानदार अध्यात्म और मजेदार अध्यात्म से क्या मतलब है
और हमें क्या करना चाहिए।
हमको उस अध्यात्म को पुनः जागृत करना चाहिए।
हमको यह तलाश करना चाहिए कि हम वे ऋषि कहाँ से लाएं, ब्राह्मण कहाँ से लाएं, हम ज्ञानी कहाँ से लाएं, पंडित कहाँ से लाएं, वे व्यक्ति जिनके भीतर आध्यात्मिकता का प्रकाश आ गया है, वो व्यक्ति हम कहाँ से लाएं। हमें बड़ी कठिनाई होती है कि हम ऐसे व्यक्ति कहाँ से लाएं जो अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगा सकें। हमको बड़ी निराशा होती है, खासतौर से उन लोगों से जिनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हैं। वे सबसे ज्यादा कंजूस हैं। जिनके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं और जो कमाने खाने लायक हो गए हैं, वे सबसे ज्यादा कंजूस हैं। जिनके पास घर में पैसा है, वे सबसे ज्यादा कंजूस हैं। लोभ और मोह ने इनको कसकर जकड़ रखा है और इनको हिलने नहीं देता। इसलिए हम उनको कहाँ से लाएं जो वानप्रस्थ परंपरा की अध्यात्म की रीढ़ हैं, जिन्होंने अध्यात्म को जिंदा रखा था और जिंदा रखेंगे, उन्हें हम कहाँ से लाएं।
मित्रों,
आज आदमी लोभ में और मोह में इतना डूब गया है और बहाना यह बनाता है कि मैं तो भागवत पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ। बेटे, तेरी काहे की रामायण और कहाँ की भागवत। तू इन्हें बदनाम करता है, गायत्री को भी बदनाम करता है, संतोषी माता को भी बदनाम करता है। बेटे, तू बेकार में अध्यात्म का नाम बदनाम करता है। जैसा तू कमीना है, जैसा तू चालाक है, जैसा तू लोभी है, जैसे तू मोह में डूबा हुआ है, वैसे ही तू भगवान को भी क्यों बनाए देता है।
भगवान शानदार हैं और उनको शानदार ही रहने दे।
नाम लेना बंद कर दे। तेरे राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम और बदनाम हो जाएगा। कोई यह कहे कि हम तो गुरु जी के चेले हैं और वहां शराब पीने और जुआ खेलने में पकड़ा जाए तो गुरु जी भी बदनाम होंगे। लोग कहेंगे कि तेरा गुरु भी चालाक होगा, चल बता कहाँ है तेरा गुरु।
उसको भी गिरफ्तार करके लाएंगे।
जिस तरह से हम हैं, उसके कारण भगवान भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कुछ हम हैं, उसी तरीके से भगवान भी पकड़ा जाएगा। इसलिए आप भगवान का नाम लेना बंद कर दीजिए।
मित्रों,
हमें ऐसे अध्यात्मवादियों की, राम का नाम लेने वाले मनुष्यों की जरूरत है, जो शानदार आदमी हो, इज्जतदार आदमी हो, जिन्होंने इसका महत्व समझा हो कि शानदार और इज्जतदार जिंदगी कैसे जियाई जा सकती है। हमें ऐसे आदमियों की आवश्यकता है, लेकिन बड़ी भारी मुश्किल यह है कि ऐसे आदमी कहाँ से लाएं। यह देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या ऐसे आदमियों की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे ढेरों आदमी भरे पड़े हैं जिनके घर वाले चाहते हैं कि हे भगवान, यह मौत के मुंह में चला जाए, मर जाए तो अच्छा है, घर में इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वे इतने मोह में डूबे हुए हैं कि घर से निकल नहीं सकते। कौन हैं वे आदमी? वे आदमी जिनके बच्चे कमाने लायक हो गए हैं, जिनके पास गुजारे के लायक दो पैसे मौजूद हैं।
वे नहीं निकलेंगे।
हम और आप निकल सकते हैं, लेकिन वे कभी नहीं निकलेंगे।
संतों की नई पीढ़ी का निर्माण। इसलिए मित्रों,
हमने यह निश्चय किया है कि अब हम ब्राह्मणों की नई पीढ़ी पैदा करेंगे और संतों की नई पीढ़ी पैदा करेंगे। किस तरीके से पैदा करेंगे?
हम एक एक बूंद घड़े में इकट्ठा करके एक नई सीता बनाएंगे।
जिस प्रकार से ऋषियों ने एक एक बूंद रक्त देकर के एक घड़े में एकत्र किया था और उस घड़े को संभाल करके जमीन में गाड़ दिया था, फिर उस घड़े में से सीता पैदा हो गई थी। आध्यात्मिकता को पैदा करने के लिए हम उन लोगों के भीतर, जिनके भीतर पीड़ा है, जिनके अंदर दर्द है, लेकिन घर की मजबूरियां जिनको चलने नहीं देती, घर की मजबूरियों की वजह से जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, अब हमने उनकी खुशामद करनी शुरू कर दी है। हमने उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया है और उनको नमस्कार कर लिया है जिनकी गर्दन को लक्ष्मी ने, मोह ने और लोभ ने दबोच लिया है। इनसे अब हमें कोई आशा नहीं रही।
मित्रों,
अब हमने आपका पल्ला पकड़ा है जिनके पास बीबी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, जिनको अपना पेट भरने की जिम्मेदारी है। हमने आपकी खुशामद करना शुरू कर दिया है। हमने उन लोगों की ओर से मुंह मोड़ लिया है जिनकी ओर से निराशा थी। संतों की ओर से हमने मुंह मोड़ लिया है। संतों से हमें कोई आशा नहीं रही।
हिंदुस्तान में 56 लाख संत हैं और 7 लाख गांव हैं।
हर गांव पीछे 8 संत आते हैं। अगर संतों में संतपन रहा होता तो हर गांव में धर्म की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए, निरक्षरों की समस्याओं को दूर करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, नशेबाजी को दूर करने के लिए, मांसाहार को दूर करने के लिए, दुराचार को दूर करने के लिए हम एक गांव पीछे 8 आदमी मुकर्रर कर सकते थे।
8 आदमी अगर मुकर्रर हो जाते तो हिंदुस्तान का कायाकल्प हो जाता, फिर वह प्राचीन काल का वही सभ्य देश हो जाता।
पर हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारे नशे हैं, उनमें से एक नशा अध्यात्म भी है, जो आदमी को संकीर्ण बना देता है और बुजदिल बना देता है और चालाक बना देता है। इस अध्यात्म ने लोगों को चालाक और बुजदिल बना दिया।
मित्रों,
हम उनसे क्या आशा करेंगे जो लंबे तिलक लगाते हैं और लंबी कंठी पहनते हैं? यह किसी काम आ सकती है? किसी काम नहीं आने वाली। वे चालाक आदमी हैं, इसलिए हमने संतों को नमस्कार कर लिया। हमने उनके बहुत चक्कर काट लिए और बहुत खुशामदें कर ली, उनकी बहुत प्रार्थना कर ली और उनके बहुत हाथ पैर जोड़ लिए कि हिंदुस्तान बड़ा गरीब है, बड़ा दुखी है और बड़ा पिछड़ा हुआ देश है। आप इसके लिए अपना पसीना बहाने के लिए खड़े हो जाएं, तो हर मनुष्य के भीतर ईमान जगाया जा सकता है, शांति लाई जा सकती है, प्रेरणा भरी जा सकती है, भगवान जगाया जा सकता है। पर उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जिस आदमी ने लॉटरी लगाना सीख लिया, सट्टा लगाना सीख लिया, फिर ऐसा आदमी कड़ी मेहनत क्यों करेगा, मजदूरी क्यों करेगा, नौकरी क्यों करेगा? जिस आदमी के हाथों नुस्खा लग गया है कि हमारे पाप तो गंगाजी में डुबकी मारने के बाद दूर हो ही जाना है और 125 रुपये की सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद वैकुंठ मिल जाने वाला है, इतने सस्ते नुस्खे जिसके हाथ लग गए हैं, भला वो त्याग का जीवन जिएगा क्यों, कष्ट में जीवन जिएगा क्यों, त्याग करने के लिए तैयार होगा क्यों? संयम और सदाचार का जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप से जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए तैयार होगा क्यों? उसको तो किसी ने ऐसा नुस्खा बता दिया है कि तुमको समाज के लिए कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संयमी और सदाचारी बनाने के लिए और तपस्वी बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप तो 125 रुपये की कथा कहलवा लिया करिए और आपके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला हुआ पड़ा है।
मित्रों, यह झूठा और बेबुनियादी अध्यात्म जिनके दिमाग पर हावी हो गया है, उनको मैं अब कैसे बता सकता हूँ कि आपको त्याग करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए और कष्ट उठाने चाहिए?
उनके लिए यह नामुमकिन है जो इतना सस्ता नुस्खा लिए बैठे हैं। वे शायद कभी भी तैयार नहीं होंगे।
उनको मैं कैसे कह सकता हूँ।
हमारा अध्यात्म कैसा घृणित हो गया है। मुझे डैक होता है, बड़ा क्लेश होता है, मुझे रोना आता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है और मुझे बड़ा दर्द होता है जब मैं अध्यात्म की ओर देखता हूँ जिसका कलेवर रावण जैसा बड़ा हुआ है।
जब मैं रामायण के पाठ होते हुए देखता हूँ, शतचंडी यज्ञ होते हुए देखता हूँ और अखंड कीर्तन होते हुए देखता हूँ,
रावण के तरीके से धर्म का कलेवर बड़ा हुआ देखता हूँ, तो यह मालूम पड़ता है कि इसमें से प्राण निकल गया, जीवन इसमें से निकल गया, इसमें से दिशाएं निकल गईं, इसमें से रोशनी निकल गई, इसमें से जिंदगी निकल गई। अब यह अध्यात्म की लाश खड़ी है।
मित्रों,
कहीं अखंड कीर्तन हो रहे हैं, कहीं अखंड रामायण पाठ हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, यह सारे के सारे कर्मकांड बड़े जोरों से चल रहे हैं। लेकिन जब हम वही अखंड पाठ करने वालों और अखंड रामायण पढ़ने वालों के जीवनों को देखते हैं कि क्या उनके भीतर वह मादा है जो अध्यात्मवादी के भीतर होना चाहिए, क्या इनके जीवन के क्रियाकलाप वह हैं जो अध्यात्मवादी के होने चाहिए, हमको बड़ी निराशा होती है जब यह मालूम पड़ता है कि सब कुछ उल्टा पुलटा हो रहा है। अध्यात्म की दिशाएं अच्छी हैं, पर हो बिल्कुल उल्टा रहा है।
नई पीढ़ी को आवाहन। मित्रों,
यह सब देखकर हमको बड़ा डैक होता है,
इसलिए निराश होकर हमको यह कहना पड़ा,
आप लोगों को, जवान आदमियों को कहना पड़ा कि आप लोग आइए और अपने बच्चों को कहिए कि उन्हें एक महीने भूखों रहना पड़ेगा और एक महीना बिना कपड़ों के रहना पड़ेगा। आप ऐसा कहिए और खुद ही उस अभाव की पूर्ति करने के लिए खड़े हो जाइए जिस अभाव की पूर्ति करने के लिए संतों ने मना कर दिया है, जिस अभाव की पूर्ति करने के लिए पुरोहितों ने मना कर दिया है, जिस अभाव की पूर्ति करने के लिए धर्मगुरुओं ने मना कर दिया है और जिस अभाव की पूर्ति करने के लिए पुजारियों ने मना कर दिया है और रामायण पाठ करने वालों ने मना कर दिया है, और जिनके पास पैसा है उन्होंने मना कर दिया है, जिनके पास समय है उन्होंने मना कर दिया है, हर एक ने मना कर दिया है। उनसे निराश होकर के हमने आपका पल्ला पकड़ा है। हम आपकी, उन आदमियों की खुशामद करते हैं जिनके ऊपर गृहस्थी की बड़ी जिम्मेदारी पड़ी है, जिनके दो दो चार चार बच्चों की शादियां करने को पड़ी हैं, जिनके लिए माँ बाप के लिए खर्च उठाने के लिए पड़ा है। हम उन सभी की खुशामद करने के लिए निकले हैं और हमने मुनासिब कदम उठाया है।
मित्रों,
यह कदम हमने कहाँ से सीखा? यह कदम हमने अपने एक पड़ोसी देश से सीखा। वह कौन सा देश है?
वह हिंदुस्तान की सीमा से लगा हुआ बर्मा देश है।
बर्मा के बाद में एक और देश में चले जाइए जो बर्मा की सीमा को पार करके आता है,
उसका नाम स्याम है।
हमारे इस पूर्वी एशिया का बड़ा मालदार देश है, संपन्न देश है, खुशहाल देश है। विद्या की दृष्टि से वहाँ बिना पढ़े लोग नहीं हैं, वहाँ अशिक्षित लोग नहीं हैं, बीमार लोग नहीं हैं।
देश जरा सा है लेकिन खुशहाली का ठिकाना नहीं।
यह खुशहाली किस तरीके से आ गई?
यह सारा का सारा देश बौद्ध है।
एक ही देश दुनिया में है जो विशुद्ध रूप से बौद्ध है।
आपको दुनिया की तवारीख में देखने का हो, हिस्ट्री में देखने का हो, तो वहाँ जाइए जहाँ की पूरी गवर्नमेंट बौद्ध है।
दुनिया भर में वह एक ही देश है और उसका नाम है स्याम।
प्राचीन काल में वहाँ बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। अब तो बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, अब तो भिक्षुक रह गए हैं। मित्रों, भिक्षु और भिक्षुक का फर्क तो आप जानते हैं। भिक्षु और भिक्षुक में जमीन आसमान का फर्क है।
भिक्षु अलग होते हैं जो संसार में शांति स्थापित करने के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं, और भिक्षुक,
भिक्षुक भिखारियों को कहते हैं। प्राचीन काल में भिक्षु थे। भिक्षु किसी तरीके से रोटी तो खा लेते थे लेकिन अपनी सारी जिंदगी का बहुमूल्य ज्ञान लोगों को बांटते रहते थे और बिखेरते रहते थे।
किसी जमाने में बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बड़ी संख्या थी।
भगवान बुद्ध जिस किसी के पास गए उसको उन्होंने यही नसीहत दी और यही उपदेश दिया कि आपको भिक्षु हो जाना चाहिए। नए छोकरे आए,
उन्होंने कहा कि गुरुदेव क्या आज्ञा है?
उन्होंने कहा बेटा भिक्षु हो जा।
भिक्षु का मतलब हराम की कमाई खाने वाला नहीं है। भिक्षु का मतलब वह है जो अपने आप को तपाता है, जो अपने आप को मुसीबत में डालता है, जो अपने आप को डैख में धकेलता है, जो अपने आप को अभाव में धकेलता है, जो अपने आप को कंगाली में धकेलता है, इन सब चीजों में धकेलने के बाद अपनी खुशहाली को दुनिया में बिखेर देता है,
उस आदमी का नाम है भिक्षु। भिक्षुक नहीं, भिक्षु बने। मित्रों, भगवान बुद्ध के पास जो नए लड़के आए उन्होंने उनसे कहा बेटे तुमको भिक्षु हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो मैं हो जाता हूँ। लड़कियां आईं और उन्होंने कहा गुरुदेव
हमारे लिए क्या आज्ञा है?
आप हमें धर्म का मार्ग बताइए,
हमको खुशहाली का मार्ग बताइए,
हमारे संतान नहीं होती, बेटी बेटे दिलवाने का रास्ता बताइए। उन्होंने कहा, बेटी को जहन्नुम में झोंक दे और तू मेरे साथ आ जा।
समाज में जा, महिला समाज में अज्ञान फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए आगे बढ़। बस क्या था,
उन छोकरियों ने भी बुद्ध का प्रकाश ग्रहण किया और भिक्षु हो गईं। 2.5 लाख के करीब उन्होंने नौजवानों को भिक्षु और भिक्षुनी बनाया। किसने बनाया?
भगवान बुद्ध ने।
क्या किया उन्होंने? हिंदुस्तान में वाममार्ग की विचारधारा के नाम पर हिंसाएं, अनाचार का जो साम्राज्य छाया हुआ था, दुनिया में अज्ञान का जो अंधेरा छाया हुआ था,
उन 2.5 लाख व्यक्तियों ने अपने आप को गला करके और बर्बाद करके दुनिया में खुशहाली पैदा की और शांति पैदा की, उन्नति पैदा की।
मित्रों,
धीरे धीरे वे बौद्ध भिक्षु लुप्त होते चले गए और जैसे हिंदुस्तान में भिक्षुक पैदा हो गए हैं, उसी तरीके से बौद्धों में भी वही हवा आई। उसमें भी भिक्षुक पैदा हो गए हैं और भिक्षु खत्म हो गए हैं। अब स्याम देश में क्या करना पड़ा? वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। उन्होंने कहा कि हम में से हर एक आदमी को 1 साल के लिए संन्यास लेना चाहिए और 1 साल के लिए भिक्षु बनना चाहिए।
वहाँ के प्रत्येक परिवार की परंपरा है कि 1 वर्ष के लिए हर आदमी को भिक्षु होना ही चाहिए,
बौद्ध विहारों में रहना ही चाहिए, बौद्ध विहारों में रहकर तप करना ही चाहिए। तप करने का मतलब समाज के लिए, सेवा करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए होता है। सारे के सारे स्याम देश में इस परंपरा को जीवंत रखने का अब एक ही तरीका है कि बौद्ध विहार इस बात की जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम देश को साक्षर बनाएंगे।
1 महीने ट्रेनिंग देने के बाद उनको 11 महीने के लिए अध्यापक बनाकर भेज देते हैं।
जब स्कूलों की 1 महीने की छुट्टी होती है, उस समय में आदमी को विहारों में रहना पड़ता है और विहार में रहने के बाद में फिर वे चले जाते हैं। जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है, वे प्राइमरी स्कूल को पढ़ाते हैं। जिन्होंने MA किया है, वे BA वाली क्लास को पढ़ाते हैं। अस्पतालों से लेकर समाज सेवा के असंख्यों कार्यों तक सारे के सारे जो कार्य होते हैं, उन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा होते हैं।
सब मिलाकर दुनिया भर में 1 लाख बौद्ध भिक्षुओं द्वारा होते हैं।
सब मिलाकर दुनिया भर में 1 लाख बौद्ध भिक्षु हैं, जो स्याम के मठों में निवास करते हैं। एक चला जाता है और दूसरा आ जाता है। गवर्नमेंट ने भी केवल चोर उठाईगिरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, चुंगी वसूल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी है, लेकिन सार्वजनिक कार्यों की सारी जिम्मेदारी बौद्ध धर्म के ऊपर छोड़ रखी है। बौद्ध विहार अपनी आवश्यकता जनता से मिले दान से, दक्षिणा से पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हर आदमी जानता है कि हम 1 साल के लिए वहां बौद्ध विहार में गए थे। हम 1 साल वहां रहे थे और रोटी हमको वहीं से मिली थी, कपड़ा हमको वहीं से मिला था।
इसलिए हमको अपनी कमाई का 1 हिस्सा बौद्ध विहार को देना चाहिए, ताकि अपने देश की शिक्षा और संस्कृति को जिंदा रखा जा सके।
मित्रों, वहां का हर आदमी यही समझता है कि हमारी कमाई का 1 हिस्सा विहार को जाना ही चाहिए।
भिक्षुओं की ज्यादातर आवश्यकताएं इसी से पूरी हो जाती हैं, अगर कुछ कमी पड़ती है तो उसे गवर्नमेंट पूरा कर देती है।
बस सारे के सारे देश का यही हाल है। वहां का सिक्का क्या है?
वहां का सिक्का इतना शानदार और मजबूत है कि उसके बराबर सारे एशिया में किसी का सिक्का नहीं है। वहां करोड़ों रुपया उस देश का जमा है। हर आदमी के पीछे आमदनी और माली हालत इतनी अच्छी है कि और किसी की भी नहीं है। स्याम देश के बारे में शायद अपने अखंड ज्योति के जनवरी के अंत में पढ़ा हो, जिसमें मैंने इस देश के बारे में लिखा है। स्याम देश के बारे में मेरे पास एक किताब है, फुर्सत मिल जाए तो आप उसे पढ़ना कि वहां की खुशहाली सारे एशिया में किस तरीके से बढ़ी।
मित्रों,
अब हम अपने देश की खुशहाली बढ़ाएंगे और दुनिया की खुशहाली बढ़ाएंगे। न केवल भौतिक खुशहाली बढ़ाएंगे, न केवल लोगों के अंदर से गरीबी दूर करेंगे, वरन इंसान के भीतर दीनता के जो भाव समा गए हैं, उन्हें भी दूर करेंगे। यह बीमारी उससे भी ज्यादा कष्टदायी है जो हमको बुखार, खांसी, दर्द, घुटने की बीमारी और कमर के दर्द के रूप में कष्ट देती है। उससे 1000 गुना ज्यादा जबरदस्त दीनता की बीमारियां हैं जो हमारे ऊपर हावी हो गई हैं और जिन्होंने हमारा ईमान, हमारा दिल और हमारा दिमाग चकनाचूर करके फेंक दिया है। अब हम उसी शान से लड़ाई लड़ेंगे जिस तरीके से स्याम के निवासी लड़ते रहे हैं। दीपक बने, औरों के लिए जलें।
मित्रों,
हमने आपकी खुशामद की और आपने हमारी प्रार्थना मंजूर कर ली। हमारे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब हम आप जैसे नौजवानों को, नई पीढ़ी के लोगों को, खासतौर से उन आदमियों को जिनके पास बीबी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, उनका पेट भरने का वजन जिनके ऊपर लदा हुआ है, हम आपको पा करके कितने खुश हैं, कह नहीं सकते। अब हम उन भाग्यहीन लोगों को चैलेंज करेंगे जिनके ऊपर न घर की जिम्मेदारियां हैं, न पैसे की जिम्मेदारियां हैं, न रोटी कमाने की चिंता है। रोटियां तो उनके घर में संदूकों में भरकर रखी हुई हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का एक कण भी नहीं है। लेकिन अभागे मनुष्य सिवाय इसके अपने पेट के लिए, पैसे के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए और वासनाओं को पूरा करने के लिए जिंदगी तबाह करते रहते हैं।
बच्चों,
हम आपको दुनिया के सामने नमूने के तौर पर पेश करेंगे। हम आपको अपनी कुर्सी पर खड़ा करेंगे, मेज पर खड़ा करेंगे और दुनिया वालों को दिखाएंगे कि ईमान वाले ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर वजन भी पड़ा हो, कष्ट भी पड़े हो, मुसीबत भी पड़ी हो, गरीबी की मार भी पड़ी हो, बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी पड़ा हो, फिर भी वे शानदार आदमी होते हैं। आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं। भारतवर्ष की आध्यात्मिकता की जीवंत मिसाल हैं। आपके आने की हमको बहुत खुशी है।
हम आपसे बड़े महत्वपूर्ण काम कराना चाहेंगे, लेकिन आपसे महत्वपूर्ण काम कराने से पहले हमको एक काम करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? यह काम करना पड़ेगा कि आप स्वयं इस लायक हो जाएं कि दूसरों को प्रकाश देने की स्थिति में आ जाएं। दीपक पहले स्वयं जला करता है। दीपक में रोशनी पहले खुद पैदा होती है।
उसमें खुद रोशनी हो जाएगी तो बाहर भी प्रकाश फैलाएगा।
दुनिया में आपने ऐसा कोई दीपक देखा है जिसके अंदर स्वयं प्रकाश न हो और बाहर प्रकाश करता फिरता हो? दुनिया में ऐसा प्रकाश कहीं हो ही नहीं सकता।
हम आपको प्रकाशवान बनाएंगे।
हम आपके भीतर प्राण भरेंगे। हमने जो यहाँ आपको एक महीने के लिए बुलाया है, उसमें कुछ ऐसी कीमती चीजें देने के लिए बुलाया है जिसको पा करके आप निहाल हो जाएंगे।
मित्रों,
हम आपको क्या चीज देंगे?
यहाँ सामान्यतः मोटे रूप से शिक्षण चलता रहेगा। हमारे दो प्रवचन होते रहेंगे।
उनकी कोई कीमत है? आपने अखंड ज्योति पढ़ी है और हमेशा मेरे प्रवचन सुने हैं।
हमारे व्याख्यान आपने दूसरी जगह भी सुने होंगे।
मेरे विचारों की आपको जानकारी है। आपको अगर जानकारी न होती तो आप यहाँ क्यों आते? मेरे पास कोई और विचार बाकी रह नहीं गया है जो मैंने कभी अखंड ज्योति में छापा न हो और पुस्तकों में छापा न हो। ठीक है, आपके समय का आक्षेप होता हुआ चला जाए, इसलिए हम यहाँ दो प्रवचन बराबर करते रहेंगे। एक घंटे सवेरे किया करेंगे और एक घंटे शाम को करेंगे। आपकी भूख दूर करने के लिए जिस तरह हम आपको दो बार खाना खिलाते हैं और फुर्ती लाने के लिए दो बार चाय पिलाते हैं, इसी तरीके से दो डोज हम आपको रोज पिलाते रहेंगे जो हमारे व्याख्यानों के हैं।
हम आपको यहाँ कर्मकांड सिखाएंगे।
यहाँ से आपको धर्ममंच से लोक शिक्षण करने के लिए समाज में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको थोड़ी सी बातें सिखाएंगे और आपको जानकारियाँ देंगे कि समाज का नया निर्माण करने के लिए आपको क्या क्या क्रियाकलाप और क्या क्या निर्माण करने पड़ेंगे।
उन कामों की भी जानकारियाँ आपको देंगे।
लेकिन यह दोनों ही जानकारियाँ गौण है, यह दोनों ही शिक्षण गौण है, यह दोनों ही बातें गौण है। असली बात यह नहीं है।
जीवात्मा का तेज ब्रह्मवर्चस्व।
असली बात क्या है? असली बात यह है कि आपकी जीवात्मा के अंदर हमें वह तेज भरना है जिसको ब्रह्मवर्चस्व कहते हैं। ब्रह्मवर्चस्व आपके भीतर पैदा हो जाए तो आप न जाने क्या से क्या करने में समर्थ होंगे।
अगर आपके अंदर ब्रह्मवर्चस्व पैदा न हो सका तो मित्रों,
आप मिट्टी के आदमी हैं, धूल के आदमी हैं, कीड़े हैं, मच्छर हैं और मक्खियां हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम आपको प्रधान बनाकर कहीं भेज देंगे तो अपनी मिट्टी पलीत करा करके आएंगे और हमारी भी मिट्टी पलीत करा करके आएंगे। आपको हम गायत्री परिवार का प्रेसिडेंट बना दें तो अभी आप धूल के बराबर हैं, मिट्टी के बराबर हैं। आप गायत्री परिवार को तबाह करेंगे और हमको तबाह करेंगे तथा अपने को तबाह करेंगे,
तीनों को तबाह करेंगे।
अगर हम आपको कोई पद सौंप दें और अमुक काम सौंप दें तो इससे कोई काम बना है? नहीं, इससे कोई काम नहीं बना है।
मित्रों,
काम किससे बनता है? काम उससे बनता है जिस जीवात्मा के भीतर प्रकाश भरा हुआ है। ऐसे आदमी जहाँ कहीं भी गए हैं, खराब परिस्थितियों को भी अच्छा बनाते चले गए हैं,
बुरे लोगों को अच्छा बनाते चले गए हैं,
बुरी परिस्थितियों पर कब्जा करते चले गए हैं, अंधेरे में रोशनी पैदा करते हुए चले गए हैं,
और जिनके दिल और दिमाग सो गए थे उनको जगाते हुए चले गए हैं।
कौन? जो स्वयं जगा हुआ है। आपको स्वयं जगा हुआ इंसान बनाने के लिए हमने इस शिविर में बुलाया है। ना जाने क्यों एक पुरानी घटना हमको बार बार याद आ जाती है। कुंभ का मेला लगा हुआ था, जैसे यहाँ कल से कुंभ मेला प्रारंभ होने वाला है,
उसी तरह कुंभ मेले में एक स्वामी जी आए थे।
स्वामी जी ने इसी तरीके से व्याख्यान दिया था जैसे हम आपको यहाँ दे रहे हैं।
हमको स्वामी जी का नाम याद आ रहा है।
उनके जो गुरु थे आंखों से अंधे थे।
उन्होंने अपने विद्यार्थी से कहा कि बेटे,
तू मुझे कुछ देगा क्या?
मैंने तुझे विद्या दे दी, प्यार दे दिया, बल दे दिया,
तू भी कुछ देगा क्या?
विद्यार्थी बोला, गुरुदेव,
मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ? लोंग का एक जोड़ा लेकर गुरुदेव के पास गया और बोला कि गुरुदेव,
दक्षिणा में बस यही है हमारे पास।
बेटे, लोंग के जोड़े का मैं क्या करूंगा? यह मेरे किस काम आने वाला है? तो फिर क्या चीज दून? मेरे पास क्या है बताइए? मैं तो साल भर आपके पास पड़ा हूँ और रोटी भी तो मैंने यहीं से खाई है, कपड़ा भी तो आपने ही पहनाया है। अब मेरे पास क्या चीज रह जाती है जो मैं आपको दून?
गुरुदेव बोले, बेटे तेरे पास इतनी कीमती चीज है जो तुझे भी मालूम नहीं है।
मेरे पास क्या चीज है?
तेरे पास है तेरा वक्त, तेरा श्रम, तेरा पसीना, तेरा हृदय, तेरा मस्तिष्क, तेरी बुद्धि, तेरी भावनाएं।
तेरे पास यह इतनी बड़ी चीजें हैं कि उसका रुपये से कोई संबंध नहीं है।
रुपया तो इसके सामने धूल के बराबर है, मिट्टी के बराबर है।
रुपया किसी काम का नहीं है इसके आगे। तेरे पास ये चीजें हैं, उन्हें तू मुझे दे दे।
विद्यार्थी को उमंग आ गई। उसने कसम खाकर कहा, गुरुजी,
कसम खाकर के कहता हूँ कि यह जिंदगी आपके लिए है और इसे आपके लिए ही खर्च करूंगा।
बस वह निहाल हो गया। आंखों से अंधे गुरु की आंखें चमक पड़ी।
कौन से गुरु की?
स्वामी बिरजानंद की। स्वामी बिरजानंद की आंखें मथुरा में अंधी हो गई थी।
बाहर की आंखें तो अंधी बनी रहीं, लेकिन भीतर की आंखों में ऐसी रोशनी आई कि चेहरा चमक पड़ा।
खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने उस विद्यार्थी से, जिसका नाम था दयानंद, से कहा कि बच्चे, तू जा पाखंड खंडिनी पताका लेकर जा।
पहला काम तुझे लोगों के मस्तिष्क की सफाई का करना पड़ेगा। पहला काम लोगों को ज्ञान देना नहीं है, रामायण पढ़ाना नहीं है, गीता पढ़ाना नहीं है, मंत्र देना नहीं है।
नहीं गुरुजी, शंकर जी का मंत्र दे दीजिए। अरे बाबा,
शंकर जी भी मरेंगे और तू भी मरेगा। पहले अपने को भीतर बाहर से धोकर के साफ कर ले। धोया नहीं जाएगा तो बात कैसे बनेगी?
पाखाने का कमोड लेकर के आप जाइए। गुरुजी,
इसमें गंगा जल डाल दीजिए।
बेटे, इसमें गंगा जल डालने की बजाय तो यह जैसी है वैसी ही पड़ी रहने दे।
मित्रों,
इंसान को जब तक धोया नहीं जाएगा और उसमें आप राम का नाम डालेंगे, हनुमान जी का नाम डालेंगे, गणेश जी का नाम डालेंगे और रामायण का नाम डालेंगे, तो रामायण की मिट्टी पलीत हो जाएगी और कृष्ण जी की मिट्टी पलीत हो जाएगी और वह गंदगी जहाँ की तहाँ बनी पड़ी रहेगी।
मित्रों,
आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है?
इसमें पहला काम सफाई का होता है, चाहे वह समाज की सफाई हो, चाहे व्यक्ति की सफाई हो, चाहे किसी की सफाई हो।
सफाई किए बिना अध्यात्म का रंग किसी पर चढ़ा ही नहीं है। कपड़ा रंगने से पहले आपने उसे धोया था ना? अगर आपने धोया नहीं होगा तो कपड़े का रंग कभी भी नहीं आ सकता।
राम का नाम कपड़ा रंगने के बराबर है। इसके पहले हमको वह काम करना पड़ता है जिसको हम संयम कहते हैं, जिसको हम तप कहते हैं,
जिसको हम योगाभ्यास कहते हैं।
तप क्या होता है, संयम क्या होता है
और योगाभ्यास क्या होता है?
इनसे आपके शरीर और मन पर अर्थात बहिरंग और अंतरंग में जो पाप और दुष्प्रवृत्तियां हावी हो गई हैं, उनको साफ करना पड़ता है।
अध्यात्म का मर्म आत्मा परिष्कार।
मित्रों, आपने इनको साफ किए बिना अगर राम का नाम लिया है तो बिल्कुल बेकार है। आपने हनुमान का नाम लिया तो बिल्कुल बेकार है। आपको किसी ने बहका दिया है कि राम का नाम लेने से पाप दूर हो जाते हैं?
यह नहीं हो सकता।
पाप दूर होने के बाद में राम का नाम लिया जाता है तो सार्थक हो जाता है।
राम के नाम से कहीं किसी का पाप दूर हुआ है, पाप दूर करने के बाद में राम का नाम लिया जाए तो वह सार्थक हो जाएगा।
असली सिद्धांत यही है जो मैंने वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, पुराणों में पाया है और जिस पर मैं यकीन करता हूँ। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि कोई आदमी कमीना आदमी दुष्टता का, चांडाल का, पापी और पिशाच का जीवन जिया करे और राम का नाम लिया करे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी।
यह बिल्कुल असंभव है।
वह किसी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक आदमी अपने मन को साफ नहीं कर लेता, हृदय को साफ नहीं कर लेता, तो राम का नाम कहाँ से लेगा?
इसलिए मित्रों,
क्या हुआ? उनके गुरु स्वामी बिरजानंद ने यह आज्ञा दी कि पहले लोगों के दिलों की और दिमाग की एवं जमाने की सफाई करनी चाहिए जो कि इतने गलीज हो गए हैं। समाज की व्यवस्था के लिए लोगों के दिलों और दिमागों की सफाई करने का काम उनको सौंपा।
किसको सौंपा? स्वामी दयानंद को। स्वामी दयानंद कुंभ के मेले में आए और उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। उस पर पाखंड खंडनी पताका लिखा हुआ था, जैसे कि आपके झंडे पर युग निर्माण योजना लिखा हुआ है। कुंभ के मेले में वे महीने भर तक व्याख्यान करते रहे। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने ढेला मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गालियां दी,
कोई आया हंसी उड़ाकर चला गया, कोई मजाक उड़ाकर चला गया।
सब चले गए और स्वामी जी खड़े रहे। उन्हें बड़ी निराशा हुई कि एक महीने तक मैंने व्याख्यान दिए लेकिन कोई आदमी सुनने के लिए नहीं आया। जो आए थे वे नाराज होकर चले गए और मजाक उड़ाकर चले गए।
मैं जो करना चाहता था वह काम सफल न हो सका। फिर क्या हुआ? स्वामी जी की समझ में आ गया कि इसकी वजह क्या है।
मेरे पास बस ज्ञान है,
मुझे रामायण कहना आता है बस। ज्ञान से कुछ काम बनेगा क्या?
ज्ञान से कुछ काम नहीं बन सकता।
मुझे तो वह शक्ति इकट्ठी करनी चाहिए जिसको हम आत्मबल कहते हैं।
आत्मबल प्राप्त करने के लिए स्वामी दयानंद वहां से चले गए।
गंगोत्री के पास एक स्थान ऐसा है जहां 5 नदियां आपस में मिलती हैं। वह सुहावना स्थान है।
उस जगह को उन्होंने अच्छा समझा। वहां एक गुफा देखी और वहीं रहने लगे।
3 साल तक वहीं रहे और आत्मचिंतन करते रहे, उपासना करते रहे।
3 साल के बाद जब उनको भीतर से महसूस हुआ तो वे उस प्रकाश को लेकर के आए। इसके पश्चात वे जहां कहीं भी गए प्रकाश फैलाते चले गए। सबसे पहले वे अजमेर गए, वहां एक बहुत बड़ा प्रेस स्थापित किया।
वहां से वैदिक ऋचाओं और आर्य समाज के ग्रंथों का प्रकाशन होने लगा।
इसके बाद वे बंबई चले गए। बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई।
वे जहां कहीं भी गए आर्य समाज की हवा फैलती हुई चली गई और एक फिजा पैदा होती हुई चली गई
और दिशा पैदा होती हुई चली गई। काम करने वाले व्यक्ति भी उनको ऐसे ऐसे जबरदस्त मिले। उस जमाने में उनको लाला लाजपत राय मिले, सर्वदानंद उनको मिले, जाने कौन कौन मिले। बड़े गजब के आदमी थे वे सब। बड़े बड़े लोहे के आदमी थे, स्टील के आदमी थे जो उनको मिले। किसको मिले? स्वामी दयानंद जी को मिले। मित्रों, स्वामी दयानंद जी को इतने जबरदस्त आदमी क्यों मिले?
क्योंकि वे स्वयं अपने भीतर आत्मबल का संबल लिए हुए थे। हम और आप जैसे होते तो हमारे पास कोई कुत्ता भी नहीं आता। हम और आप जैसे लोगों की मिट्टी पलीत हो सकती है, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य है उनके पास अच्छे व्यक्ति आए हैं और हमेशा आएंगे और आते रहेंगे। उसके लिए उनका भंडार कैसे खाली हो जाएगा जिनके भीतर स्वयं भंडार भरा हुआ है? उनके भंडार कभी खाली हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इस धरती पर एक से एक बढ़िया और एक से एक बेहतरीन आदमी आए हैं और जरूर आएंगे। स्वामी दयानंद ने जो काम किया मैं भी वही करना चाहता था।
मित्रों,
आप इस कुंभ के अवसर पर यहाँ 1 महीने के लिए आए हैं, गंगा किनारे आए हैं। वहाँ आए हैं जहाँ हिमालय का द्वार खुला हुआ है। आप शांतिकुंज में आए हैं तो यहाँ से आप वह चीज ले करके जाएं जो हमारे व्याख्यानों से 1000 गुनी ज्यादा कीमती है और जिसका हम शिक्षण करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो आपको कर्मकांड और हवन की विधि, संस्कार आदि सिखाने वाले हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा कीमती वह चीज है जिसे कमाकर यदि आप ले जाएं तो आपकी यह कमाई बड़ी शानदार होगी और बड़ी महत्वपूर्ण होगी और जिंदगी भर काम देगी। उससे आपका भी काम चल जाएगा और हमारा भी काम चल जाएगा।
आपका भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा।
आप उस चीज को लेकर के जाएं जो हम आपको देना चाहते हैं।
आप क्या चीज लेकर के जाएंगे? आप यह चीज लेकर के जाएं, एक भगवान की भक्ति, भगवान पर विश्वास, भगवान की निष्ठाएं।
इन्हें आप इकट्ठा करके ले जाएं।
मित्रों,
क्या करना पड़ेगा?
आपका असली कार्यक्रम वही है जो अभी हमने आपको बताया।
नकली कार्यक्रम यह है कि आप विचारों की दुनिया में खोए रहें, अच्छे विचार आपके ऊपर हावी रहें, बुरे विचार आपके ऊपर हावी न होने पाएं। इसलिए हमने सारे का सारा 8 घंटे का कार्यक्रम बना दिया है। चाहे तो आप उस 8 घंटे के कार्यक्रम में उलझे रहें जिससे कहीं बुरे ख्याल आपके ऊपर हावी न हो जाएं
और अच्छे विचार घेरे रहें।
असल में आप इन सब बातों से 2 फुट ऊंचे उठकर रहना और यह सोचना कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, यही कि हम यहाँ से शक्ति के पुंज लेकर के जाएंगे और शक्ति की धाराओं को लेकर जाएंगे। शक्ति की धाराएं कहाँ से आएंगी और शक्ति की धाराएं हमें कहाँ लाना चाहिए?
साथियों,
इसमें कुछ काम आपका है और कुछ काम हमारा है। कुछ आप कीजिए, कुछ हम करेंगे। कुछ काम बेटा करता है और कुछ बाप करता है। बाप किताबों का इंतजाम करता है, फीस का इंतजाम करता है। बाप बेटे के लिए खाने का इंतजाम करता है और बेटा पढ़ने का इंतजाम करता है, किताबों को लेकर बैठा रहता है। बेटे का काम बेटा करता है और बाप का काम बाप करता है। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो बेटा MA अच्छे डिवीजन में पास हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता है। अगर बाप अपना काम करने से इनकार कर दे कि हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, हमारे पास फीस नहीं है, हम रोटी नहीं खिलाएंगे, भाग जाओ,
तो फिर बेचारा बच्चा पढ़ेगा तो सही, किंतु कोई गारंटी नहीं है कि वह अच्छे डिवीजन में ही पास हो जाए।
इसी तरह यदि बाप सारे का सारा सामान मुहैया करा दे और बेटा इनकार कर दे कि पिताजी हमको नहीं पढ़ना है, आप पैसा देते हैं तो ठीक है, आपने कापी मंगा दी तो ठीक है, ट्यूशन लगा दिया तो अच्छा है, लेकिन हमको फुर्सत नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे,
हम तो सिनेमा देखेंगे।
बेटे, तब भी मुश्किल है। दोनों के सहयोग से काम चलेगा। आप अपना काम करना और हम अपना काम करेंगे। हम और आप दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक अच्छी मंजिल पार कर लेंगे, और जिसको पाने के लिए आपको बुलाया है वह आप जरूर ले करके जाएंगे।
मित्रों,
इसके लिए आपको क्या करना चाहिए?
आपको भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान की उपासना क्या होती है? भगवान के समीप जा बैठना।
भगवान के समीप जा बैठना किसे कहते हैं? जैसा भगवान होता है उसी तरह से जब हम बन जाते हैं तो उसको हम उपासना कहते हैं। आग जल रही होती है, उसमें हम लकड़ी डाल देते हैं तो यह उपासना हो जाती है। आग जैसी है वैसा ही या तो लकड़ी को बनना पड़ेगा, या फिर लकड़ी जैसी है वैसे ही आग को बनना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। आग अपनी जगह बनी रहे और लकड़ी अपनी जगह बनी रहे तो यह कैसे हो सकता है?
पानी और मिट्टी को हम मिला देते हैं तो या तो मिट्टी को पानी बनना पड़ेगा या फिर पानी को मिट्टी बनना पड़ेगा।
यह कैसे हो सकता है कि पानी अलग रखा रहे और मिट्टी अलग रखी रहे? भगवान की उपासना आप करें और भगवान की विशेषताओं को, भगवान के गुणों को और भगवान की धाराओं को अपने भीतर आप धारण न करें, यह कैसे हो सकता है? आप उनमें मिल जाए या अपने में उन्हें मिला लीजिए। उपासना इसी का नाम है। इससे कम में कोई उपासना नहीं हो सकती।
मित्रों, आपने किसी को हर्फों का उच्चारण करना सिखा दिया, मुबारक।
इसे जिंदा रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। हर्फों का उच्चारण करने में बुराई भी क्या है?
पहले आप गंदे गाने गाया करते थे और सीलोन रेडियो सुना करते थे।
उसके स्थान पर अब कुछ हर्फों का उच्चारण करना आपने सीख लिया है तो उसमें बुराई की क्या बात है? यह अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन बात इतने से ही बनने वाली नहीं है।
आप भगवान जैसे विशाल, भगवान जैसे महान होने के लिए अपने अंदर वे प्रेरणाएं और वे दिशाएं पैदा कीजिए, वह गर्मी पैदा कीजिए, वह महानताएं पैदा कीजिए, तो आपकी उपासना सफल मानी जाएगी।
गुरुजी, उपासना के लिए कर्मकांड।
हाँ बेटे, आपको थोड़े से कर्मकांड भी सिखाएंगे।
क्या सिखाएंगे?
आपको गायत्री मंत्र की उपासना सिखाएंगे।
गायत्री मंत्र से बढ़िया कोई मंत्र दुनिया में नहीं है, मेरा तो इस पर अटूट विश्वास है।
एक बात याद रखना कि जप या उपासना भावना पूर्वक होनी चाहिए, बिना भावना के नहीं।
बिना भावना के अगर आप जप कर रहे होंगे तो आपको नींद आ जाएगी।
फिर कहेंगे कि गुरुजी, पहले तो हमारा बड़ा मन लगता था लेकिन अब नहीं।
अच्छा, बता बेटा, तूने भावना के साथ कब किया?
एक दिन भी तो नहीं किया। तूने जबान की नोक से उच्चारण किया।
परंतु जबान की नोक से उच्चारण करने पर न कोई परिणाम होते हैं, न कोई मन लगता है, न कोई उसमें निष्ठा होती है, न कोई बात बनती है।
क्यों?
क्योंकि तूने जबान की नोक से किया था। यहाँ जबान की नोक से मत करना,
यहाँ भावना पूर्वक जप करना।
मित्रों,
गायत्री और यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति के माता पिता हैं। गायत्री का स्थूल रूप, गायत्री का बहिरंग रूप वह है जो हम पालथी मारकर बैठे रहते हैं और जप करते रहते हैं। यज्ञ का स्थूल रूप वह है जो वेदी बनाते हैं, समिधा लगाते हैं और घी होमते हैं, आरती उतारते हैं। यह सब स्थूल रूप है, यह इसका सूक्ष्म रूप नहीं है।
सूक्ष्म रूप की गायत्री अलग है और सूक्ष्म रूप का यज्ञ अलग है। सूक्ष्म रूप की गायत्री को आपको यहाँ लगातार करते रहना चाहिए।
प्रातःकाल 4:30 बजे हम घंटी बजाते हैं, तब उठेंगे। 6:15 बजे आपको चाय के लिए बुलाते हैं। आपके इस तरह 1.5 घंटे बन जाते हैं।
1.5 घंटे में ही आपको शौच स्नानादि से निवृत्त हो जाना चाहिए।
इससे निवृत्त होने के पश्चात आपको अपनी उपासना में बैठ जाना चाहिए। उपासना में मात्र जप करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसके साथ ध्यान भी जुड़ा हुआ है।
दानवीर कर्ण की उपासना में सूर्य का ध्यान भी शामिल था।
कौन सा वाला? जिसका कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यज्ञ एकता का प्रतीक है।
यज्ञ अग्नि का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, ब्रह्मवर्चस्व का प्रतीक है।
उसका बहिरंग रूप वह है जो हम हवन करते हैं, लेकिन उसका अंतरंग रूप वह है जो सूर्य के रूप में दिखाई पड़ता है। आप सवेरे जप किया करें और इसके लिए पालथी मारकर बैठ जाया कीजिए।
धूप बत्ती जलानी हो तो जला लीजिए, साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने के लिए एक पात्र में पानी रख लीजिए। खुले आकाश में कहीं बैठ जाइए, कमरे में बैठ जाइए अथवा बाहर बैठ जाइए। मैं तो आजकल बाहर ही बैठता हूँ।
ऊपर वाला कमरा है उसको बंद कर देता हूँ और जहाँ सितारे चमकते हैं, खुला आसमान चमकता है, वहाँ बैठ जाता हूँ और भगवान का ध्यान करता रहता हूँ,
उसकी लीला को देखता रहता हूँ,
प्रकाश की रोशनी ग्रहण करता रहता हूँ। आप भी यहाँ 1 महीने तक ऐसे ही करना।
मित्रों, प्रातःकाल जहाँ कहीं भी आपको सारे के सारे स्थान में जहाँ सुंदर स्थान मालूम पड़ता हो, एकांत मालूम पड़ता हो,
जहां से खुला आसमान दिखाई पड़ता हो, आप वहां बैठ जाना और ध्यान करना।
आंखें बंद करके मन ही मन गायत्री का जप करना और भावना करना कि ज्ञान की गंगा में बह रहे हैं। शांति कुंज में ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। यह तीर्थ गंगोत्री है जहां आप निवास करते हैं। यहां से ज्ञान की गंगा का उद्गम होता है।
इसको उत्पन्न करने वाले कई एक हैं।
हम लोगों की कई सम्मिलित दुकानें हैं।
कौन सी? शांति कुंज उनमें से एक है। शांति कुंज का बहिरंग रूप हमने बनाया है।
यहाँ पत्थर इकट्ठा करने, ईंटें इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन यह सब इकट्ठा करने के पहले इसमें जो प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं, जो दिशाएं भरी पड़ी हैं, जहां से हम इस भारतवर्ष को भगवान बुद्ध की तरीके से हजारों और लाखों की संख्या में वो व्यक्ति देने वाले हैं, जिससे हमारी प्राचीन परंपराएं पुनः जागृत हो सके।
मित्रों,
यह दुकान जिन्होंने बनाई है उसमें केवल हम ही हिस्सेदार नहीं है, वरन एक और हमारा शेयर होल्डर है, और वे हैं हमारे गुरुदेव। जब आप प्रातःकाल ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, तब आप यह अनुभव नहीं करेंगे कि हम एकाकी जप कर रहे हैं, एकाकी ध्यान कर रहे हैं।
वस्तुतः यहाँ कोई शक्ति आती है।
हम केवल अकेले ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, वरन वास्तव में ही कोई शीतलता की लहरें आती हैं और आपको कंपन उत्पन्न हो जाता है और आपके शरीर में पसीना उत्पन्न हो जाता है। आपके अंदर सिहरन और फुर्किन पैदा हो जाती है। प्रातःकाल में आप यह अनुभव करेंगे।
आप सूर्य का ध्यान करना, आंखें बंद कर लेना और ध्यान करते हुए आप यह अनुभव करना कि सूर्य प्रकाश का सूर्य नहीं, चमक वाला सूर्य नहीं, वरन ज्ञान का सूर्य है, सविता देवता।
सविता देवता अलग है और सवेरे निकलने वाला सूर्य अलग है।
सवेरे निकलने वाला सूर्य प्रतीक है, सिंबल है।
यह सविता का सिंबल है, लेकिन असली सूरज नहीं है। असली सूरज वह है जिसको हम सविता देवता कहते हैं, आदित्य कहते हैं।
ज्ञान का सूर्य, तप का सूर्य, ब्रह्मचर्य का सूर्य है वह जिसका आप ध्यान करते हैं।
उसकी सारी की सारी किरणों में आप कमर तक डूबे हुए हैं। क्रमशः कमर के ऊपर से नीचे तक, बाहर से लेकर भीतर तक प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही हैं। सूरज की धूप में जहां आप खड़े हुए हैं, वहां ऊपर से ब्रह्मवर्चस आता है और वह आपके मस्तिष्क में आता है, फेफड़ों में आता है, आपके पांवों से लेकर कमर तक और हाथों से लेकर जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, दोनों ही ज्ञान की गंगा से और प्रकाश के रूप में ब्रह्मवर्चस से उत्प्रोत होती चली जा रही हैं। आप इस तरीके से जप करना और ध्यान करना।
एक घंटा हो सके तो एक घंटा करना।
6:15 बजे आपको बंद करना ही पड़ेगा। जल्दी उठना चाहें तो आप जल्दी भी उठ सकते हैं, आपको यहाँ कोई रोक नहीं है। लेकिन 4:30 बजे सुबह आपको हर हालत में उठ ही जाना पड़ेगा। इससे पहले आपको उठना है तो उठ सकते हैं, लेकिन आप उठे शांति से। दूसरों को डिस्टर्ब न करें, चिल्लाएं नहीं, जोर जोर से श्लोक नहीं पढ़ें, चुपचाप उठ जाएं और नित्यक्रिया से निवृत्त होकर जगह जगह पर नल लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं, वहां स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात में प्रातःकाल में जो भी समय आपको मिल जाता है उसमें जप और ध्यान कर लिया करें। जप कितना हो गया, संख्या की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। संख्या की गणना कराने की ओर हम आपका ध्यान बटाना नहीं चाहते। हम आपका ध्यान भगवान में लगाए रहना चाहते हैं।
आप माला गिनेंगे तो आपका ध्यान भंग होगा और छिन्न भिन्न होता चला जाएगा।
कितनी माला हो गई और कितनी गिनती हो गई, आप इसी झगड़े और जंजाल में फंस जाएंगे।
इसलिए अब आपकी माला गणना खत्म।
अब आपको जप के रूप में भी ध्यान, प्रकाश में ज्ञान के रूप में भी ध्यान, ज्ञान की गंगा का भी ध्यान करना होगा। ज्ञान की गंगा आपके बाहरी शरीर को छू नहीं रही है, वरन आपके हृदय को भी धो रही है,
मन को भी धो रही है, आपकी बुद्धि को भी धो रही है,
आपके चित्त को भी धो रही है, आपके अहंकार को भी धो रही है, सारी मलिनताओं को और पापों को धोती चली जा रही है। कौन धोती चली जा रही है?
ज्ञान की गंगा।
असली गंगा यही है जिसका मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।
मित्रों,
असली सूरज वह नहीं है, वरन सविता है जिसकी ओर मैंने आपको इशारा किया।
ब्रह्मचर्य, आत्मबल, आत्मतेज का स्रोत वही है, वही सूर्य आपका उद्धार करेगा।
उसी के भीतर से आपके अंदर स्फुरना और प्रेरणा आएगी। आज से आप यही करना, बस आपके लिए यही काफी है। बाकी हम करेंगे आपके लिए, हमारे गुरुदेव करेंगे आपके लिए और हमारा भगवान करेगा आपके लिए, जिसके इशारे पर नए कार्य के निर्माण प्रारंभ किए गए हैं। हमारे इशारे पर यह कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं। आप हमारे बुलाने पर यहाँ नहीं आए हैं। कोई बड़ी जबरदस्त सत्ता इस समय काम कर रही है जो आपको घसीट लाई है, खींच लाई है और जो आपको इस ओर चलने के लिए मजबूर करती है। आप उसकी प्रेरणा पर आए हुए हैं।
वही प्रेरणा जो आपको यहाँ तक घसीट कर लाई है आपको आत्मबल देगी। आपको ब्रह्मवर्चस्व देगी,
आपकी जीवात्मा को धोने में सहायता करेगी, वह गंगा आपकी मलिनता को धोएगी,
वह प्रकाशपुंज आपके भीतर गर्मी पैदा करेगा, एक महीने के भीतर आप आत्मबल लेकर जाना।
यह बात मैंने आपको सुबह की निवेदन किया। इसके बाद में यहाँ का टाइम टेबल 6:15 बजे से शुरू होता है, जिसमें माताजी आपको चाय के लिए बुलाती हैं। इससे आप 6:30 बजे तक निवृत्त हो जाते हैं।
7:15 बजे से प्रवचन शुरू हो जाता है जो 7:45 बजे तक चलता है।
8 बजे के बाद हमारे दूसरे कार्य आरंभ हो जाते हैं। यहाँ आपको धर्म मंच के माध्यम से किस तरीके से लोक निर्माण करना पड़ेगा, सारे के सारे शिक्षण दिए जाते हैं। आपकी वाणी को खोला जाना है, जो आपका मुख्य हथियार होगा। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, जिन लोगों से भी आप मिलेंगे, उसमें आपके स्त्री बच्चे भी शामिल हैं, उसमें आपके पड़ोसी भी शामिल हैं, उसमें आपके संबंधी कुटुंबी भी शामिल हैं, आपके समाज के लोग भी शामिल हैं। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, जबान तो खोलनी ही पड़ेगी। जबान नहीं खोलेंगे, संकोच में बैठे रहेंगे, तो बात कैसे बनेगी? जबान के द्वारा ही तो हम आपके मन की आग दूसरों के मस्तिष्क में प्रवेश करा सकेंगे।
इसलिए यहाँ आपको प्रवचन करने का बराबर प्रशिक्षण करेंगे।
अधिकांश समय इसमें लगाया जाएगा कि आपको बोलने की कला आ जाए। इसके बाद हम आपको लोगों के पास भेजेंगे, मुख्य रूप से 2 आदमियों के पास भेजेंगे। एक तो लाखों आदमी वे हैं जो कि हमारे संपर्क में आए और प्रकाश प्राप्त न कर सके। हम आपको जामवंतों की तरीके से भेजेंगे और यह कहेंगे कि जहाँ कहीं भी हनुमान बैठे हुए आपको दिखाई पड़े, वे सिर पर हाथ रखकर बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि मैं किस तरीके से छलांग लगाऊं, समुद्र तो बड़ा लंबा है, सीता की खबर मैं किस तरीके से लगाऊं।
जिस तरीके से जामवंत ने कहा, हनुमान
आपको अपने बल का ज्ञान नहीं है,
आप छलांग तो लगाइए, उसी तरीके से हमारे पास बहुत से हनुमान बैठे हुए हैं।
वे 1 लाख की संख्या में हैं, शाखा के कार्यकर्ताओं के रूप में, सक्रिय सदस्यों के रूप में, अखंड ज्योति के पाठकों के रूप में वे बैठे हुए हैं। उनमें बहुत जीवट है, जीवट न होती तो उनको हमने क्यों बांध करके रखा है, हमने उनको क्यों बुला करके रखा है, संबंध बनाकर क्यों रखा है।
मित्रों,
जिस तरीके से माली अच्छे से अच्छे फूलों को चुन लेता है, हमने भी अपने कुटुंब में और परिवार में अच्छे मोतियों को चुनकर रखा है। अच्छे मोतियों को चुनकर जिस तरीके से माला बनाई जाती है, हमने भी अच्छे मोतियों को चुनकर रखा है। लेकिन इन मोतियों और हीरों पर खराद लगाई जानी बाकी है। यहाँ से जाने के बाद में हम आपको उन कार्यकर्ताओं के पास भेजने वाले हैं जो सारे देश भर में फैले हुए हैं।
उनको आपको प्रेरणा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, हिम्मत बढ़ाना चाहिए और जोश दिलाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको उद्बोधन देना चाहिए। इस तरह क्रिया के संबंध में हमारा प्रातःकाल का प्रवचन होगा।
आपको जहाँ कहीं भी हमारे कार्यकर्ता मिले, उनसे क्या कहें? आपको जनता के पास जाना पड़ेगा जो अभी तक हमारे संपर्क में नहीं आए हैं। अभी तो उन्होंने केवल यह जाना है कि गुरुजी गायत्री हवन कराने वालों में से हैं और जप कराने वालों में से हैं। जप कराकर उद्धार की शिक्षा देते हैं और हवन कराकर सब मनोकामना पूर्ण करने की शिक्षा देते हैं। हमारे बारे में उन्हें इतनी ही जानकारी है जो मक्खी और मच्छर के बराबर जानकारी है।
हमको वे समझते हैं कि ये तो गायत्री का जप सिखाने वाले हैं।
जप करना माने गुरुजी का चेला होना मानते हैं वे।
जप करने वाला गुरुजी का चेला नहीं हो सकता।
बेटे, जप करने से हम शुरुआत कराते हैं, जप कराने से आखिर नहीं कराते। आखिर तक यह बड़ा लंबा हो जाता है।
इसलिए मित्रों,
क्या करना पड़ेगा?
जनता के पास इस नए निर्माण की विचारधारा को पहुंचाना पड़ेगा। नए निर्माण की विचारधारा का अर्थ होता है व्यक्ति की महानता को जागृत करने की विचारधारा, समाज को नवजीवन देने की विचारधारा, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, समग्र निर्माण, धर्म का निर्माण।
सायंकाल को जो हमारे प्रवचन होंगे, उसकी दिशा यह होगी कि जब कभी आपको जनता के मध्य स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, तो जनता तक अभी तक जहां हमारा प्रकाश नहीं पहुंच पाया है, उनको आपको क्या क्या कहना पड़ेगा, उनसे आपको क्या कहना चाहिए, यह शिक्षण हम आपको शिविर में देंगे।
व्याख्यान देने की शैली, कर्मकांडों की शैली दूसरे लोग सिखाते रहेंगे। कौन से वाले कर्मकांड?
जिनका सहारा लेकर, संबल लेकर के बच्चों को खड़ा करना आपको सिखाना है। हमारे त्योहार और संस्कार ऐसे संबल हैं जिनसे हम परिवार निर्माण करने की शैली सिखा सकते हैं। धर्ममंच से हम जो कुछ भी सिखाएंगे, धर्ममंच पर खड़े होकर के सिखाएंगे, समाज के मंच पर नहीं। हम समाज के और अर्थशास्त्र और राजनीति के मंच पर नहीं खड़ा होना चाहते। हम धर्म के मंच पर खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि हृदय तक यही हमारी बात को पहुंचा सकता है। इंजेक्शन द्वारा खून के दौरे में दवाई पहुंचाने के लिए एक महीन सुई की जरूरत होती है।
उसमें सुराख होना चाहिए।
अगर सुई सुराख वाली नहीं होगी तो हम खून में दवा नहीं पहुंचा सकते। धर्म उसी चीज का नाम है, अध्यात्म उसी चीज का नाम है जो मनुष्य के हृदय तक पहुंच सकता है।
राजनीति दिमाग तक पहुंच सकती है।
समाजशास्त्र लोगों के विचारों को दिमाग तक पहुंचा सकता है।
अर्थशास्त्र लोगों की प्रेरणाएं दिमाग तक पहुंचा सकता है।
हृदय तक पहुंचाने की सामर्थ्य इनमें से किसी में नहीं है। हमारा सारा का सारा कार्य जो प्रारंभ होता है लोगों के हृदय तक अपनी बात पहुंचाने से होता है। इसलिए हमेशा हमारा आधार वही रहेगा जिसको हम धर्म कहते हैं। धर्ममंच के माध्यम से हम आपको बहुत सी बातें बताना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि 16 संस्कार जो प्राचीन काल में जिंदा थे फिर जिंदा हों। हर घर में वेदमंत्रों की ऋचाएं गूंजे, भारतीय संस्कृति का संदेश जा पहुंचे। हम चाहेंगे कि गांवों में त्योहार मनाए जाएं और उसमें भारतीय संस्कृति की ऋचाएं गूंजें।
हमारे संदेश, हमारे शिक्षा की जानकारी लोगों को मिले। मित्रों,
आपको एक घंटे का समय पूजा के लिए मिल जाता है। सुबह का एक घंटा समय पूजन के लिए बहुत होता है। अगर आप एक घंटा सच्चे मन से प्रकाश को ग्रहण करते हुए चले जाएं और सच्चे मन से ज्ञान की गंगा में नहाते हुए चले जाएं, तो यह पर्याप्त है। इतने से ही आपकी धुलाई और रंगाई के दोनों काम हो जाएंगे। ज्ञान की गंगा में, गायत्री की गंगा में नहा करके आपकी धुलाई जरूर हो जाएगी और सूर्य का प्रकाश जो आप लेने वाले हैं उससे आपके भीतर चमक जरूर पैदा हो जाएगी। अभी आप करके देखना, यहाँ एक महीना करना, फिर आप देखना कि आपके अंदर कोई चमक आई कि नहीं आई। आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपकी आंखों में चमक आएगी, मस्तिष्क में चमक आएगी, वाणी में चमक आएगी और आप देखेंगे कि हम कितने धुले हुए उज्ज्वल बनते चले जा रहे हैं। यह प्रातःकाल का 6:15 बजे के बाद का समय है जब आपको इसे ग्रहण करना है।
मित्रों,
हम आपको वही बात कहेंगे जो हमसे किसी ने कही है। हम अपनी ओर से क्या कह सकते हैं और क्या कहने लायक हैं।
लेकिन जो प्रभावशाली और महत्वपूर्ण शिक्षण हमको मिला है वह हम आपको सिखाएंगे।
जो हमसे कहा गया है वही हम आपसे कहेंगे और कोई चीज हमारी कहने की नहीं है।
जो हमारे मार्गदर्शक ने, हमारे गुरु ने और हमारे आगे चलने वाले ने हमको सिखाया है, इसके अलावा हम कोई नई बात आपको सिखाने वाले नहीं हैं।
व्यक्ति निर्माण के लिए और समाज निर्माण के लिए दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई है।
व्यक्ति उठेगा तो समाज उठेगा, समाज उठेगा तो व्यक्ति उठेगा।
व्यक्ति और समाज को हम अलग नहीं कर सकते। घड़ी और पुर्जे को हम अलग नहीं कर सकते।
घड़ी चलेगी तो पुर्जे की कीमत बढ़ेगी, पुर्जा ठीक होगा तो घड़ी चलेगी।
दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
व्यक्ति अकेला उत्थान कर ले, अकेला कल्याण कर ले और समाज की उपेक्षा कर दे, यह नामुमकिन है।
समाज के साथ में जुड़ा हुआ आदमी आगे बढ़ सकता है।
अकेला आदमी तो बढ़ ही नहीं सकता।
अकेला घड़ी का पुर्जा क्या कर सकता है? घड़ी में मिला रहेगा तभी तो उसका मूल्य है।
मित्रों,
मुख्य बात जो अभी मैंने आपको बताई है उसमें सबसे अधिक ध्यान जो आपको देना है वह इस बात पर देना है कि ज्ञान की गंगा का ध्यान जो आप करेंगे और प्रकाश का ध्यान जो आप करेंगे वह तो होगा ही, लेकिन आप 24 घंटे यह अनुभव करेंगे कि कोई ज्ञान की गंगा, कोई भावना की गंगा, कोई प्रेरणा की गंगा हर वक्त आपको, आपके हृदय को, आपकी भावना को छू रही है। आप हर समय यह अनुभव करेंगे कि प्रकाश की किरणें अज्ञात लोक से चली आ रही हैं और आपके हृदय को छू रही हैं, आपके मस्तिष्क को छू रही हैं, वाणी को छू रही हैं और अंतःकरण को छू रही हैं। यही हमारा बल है, यही हमारी संपत्ति है, यही हमारा शिक्षण है, यही हमारा अनुदान है, यही हमारा आशीर्वाद है जिसको लेकर के आप जाएंगे और हमारा काम करेंगे, अपना उद्धार करेंगे,
देश का उद्धार करेंगे, मानव जाति का उद्धार करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे।
वह प्रकाश ले करके आप जाएंगे जिसके लिए हमने आपको बुलाया है।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।